नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणीं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। పంచతత్వాత్మకం కృష్ణ భక్తరూపాస్వరూపకం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం నమామి భక్తిశక్తికం ఆరాధ్యో భగవాన్ వ్రజేశతనయ తద్ధామ వృందావనం రమ్యా కాచిదుపాసనా వ్రజవతు వర్గేణయా కల్పితా శ్రీమద్భాగవతం ప్రమాణమమలం ప్రేమాపుమర్థో మహాన్ శ్రీచైతన్య మహాప్రభుర్మతమిదం తత్రాదరాత్మపరః హే కృష్ణ కరుణా సింధౌ దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరిప్రియే జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ అర్జున్ హరి ప్రభు నే నివేదన కియా థా కి ఉన్కే ఇస్ నయే ఘర్ మే సత్సంగ్ आयोजन कर रहे हैं। तीन दिन यहाँ पे कार्यक्रम होंगे तो यहाँ हमें आना है कुछ कृष्ण कथा करने के लिए। बढ़िया स्थान है सत्संग के लिए, मेरे ख्याल से लगभग 70-80 भक्त बैठ ही सकते आराम से। तो यहाँ परम पूज्य राधा रमण महाराज बैठे हैं। अच्छा ये होता कि वो यहाँ प्रवचन देते, परंतु उनकी अनुमति से और आप सबके आशीर्वाद से कुछ कहने का साहस करेंगे। केवल वृंदावन के नहीं, यहाँ मायापुर के भक्तों को भी देख रहे हैं। मायापुर के कितने भक्त आए हैं यहाँ पर? 28। आप सब हिंदी समझते हैं ना? हिंदी समझते हैं। तो कल हम शाम को अर्जुन हरि प्रभु से चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि किस विषय पे हमें कुछ कहना चाहिए। उन्होंने कहा वैसे गिरिराज का विषय कर रहे हैं, तो सोचा ठीक है चलो फिर गिरिराज के बारे में कुछ कहा जाए। तो ये एक प्रार्थना है श्री गोवर्धन वास दशक प्रार्थना, श्री गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम, रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा विरचित। आपके पास ये है, इसमें ये प्रार्थना है, बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है ये, और हम सब के लिए जो कि षड गोस्वामियों के अनुयायी हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गोवर्धन का महत्व हमारे लिए क्या है, कितना है, क्यों है? और हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हैं, गिरिराज परिक्रमा करते हैं, तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा बहुत चिंतन मनन करना बहुत ही लाभदायक और अनुकूल है। तो सबसे पहले हम इसका गान करेंगे, मालिनी राग में। ये छंद है, वास्तव छंद मालिनी छंद है। दशकम अर्थात 10 श्लोक हैं, परंतु फलश्रुति अंतिम श्लोक हमेशा फलश्रुति होती है, अर्थात इसका श्रवण कीर्तन करने से पठन करने से क्या लाभ मिलता है उसका भी वर्णन होता है अंतिम श्लोक में। निजपति भुजदंड छत्र भावं प्रपद्य प्रतिहत मद धृष्ट दंड देवेंद्र कर्व अतुल पृथुल शैल श्रेणी भूप प्रियं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नवयूनोर्द्वन्द्वमस्मिन्न मन्दम् इति किल कलनार्थं लग्नकस्तद्वयोर्मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् अनुपम मणिवेदी रत्न सिंहासनोर्वी रुहचरदरसानो द्रोणी संघेषु रंगैः सह बल सख भेषं खेलयन् स्वप्रियं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् रसनिधि नवयूनो साक्षिणीं दानकेले ज्योति परिमल विद्धं श्याम वेदिं प्रकाश्य रसिकवरकुलानां मोदमास्फालयन् मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् हरिदैतम पूर्वं राधिका कुण्डमात्मा प्रिय सखमिह कंठे नर्मणा लिंग्य गुप्तः नवयुव युग खेलस्तत्र पश्यन् रहो मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् स्थल जल तल शष्पैर्भूरुहा छायया च प्रतिपदमनुकालं हन्त संवर्धयन् गाः त्रिजगति निजगोत्रं सार्थकं ख्यापयन् मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् सुरपति कृत दीर्घ द्रोहतो कोष्ठ रक्षां तव नव गृह रूपस्यांतरे कुर्वतैव अघपकरि पुनोच्चैर्दत्तमान द्रुतं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् ज्ञानं गिरिनृपहरिदास श्रेणिवर्येति नाम अमृतमिदमुदितं श्री राधिका वक्त्रचन्द्रा व्रज नवतिलकद्वे क्लिप्तवेदस्फुटं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं निज जनयुत राधा कृष्ण मैत्री रसाक्त व्रज नर पशु पक्षी व्रात सौख्यैक दातः अगणित करुणत्वान् मामुरीकृत्य तं तं निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं निरुपति करुणेन श्रीशचीनन्दनेन त्वयि कपटिशठोऽपि त्वत्प्रेणार्पितोऽस्मि इति खलु मम योग्या योग्यतमम् अगृह्णन् निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं रसद दशकमस्य श्रील गोवर्धनस्य क्षितिधर कुल भर्तुर्यः प्रयत्नादधीते सपदि सुखदेस्मिन् वासमासादि साक्षात् शुभद युगल सेवा रत्नमाप्नोति तूर्णम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोवर्धन आश्रय दशकम इस स्तुति की रचना भी की है। तो इस स्तुति में उन्होंने गोवर्धन के महात्म्य का वर्णन भी किया है। तो इसलिए ये ध्यान में रखते हुए कि गोवर्धन के निकट निवास करने से सारी सफलता और सिद्धि भक्ति की प्राप्त हो सकती है, रघुनाथ दास गोस्वामी अब इस प्रार्थना के द्वारा, जिसका नाम है गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम, में इस इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। उनकी लालसा है निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम, कि हे गोवर्धन, आपके निकट मुझे वास प्रदान कीजिए। वैसे इस प्रार्थना के ऊपर श्री बलदेव विद्याभूषण ने टीका लिखी है, सुंदर संक्षिप्त है टीका, छोटी है टीका, फिर भी बहुत सुंदर है। तो सबसे पहले श्लोक में रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, हे गोवर्धन, अतुल पृथुल शैल श्रेणी भूप, अतुल आपकी तुलना नहीं की जा सकती, पृथुल आप तो बहुत महान है, शैल अर्थात पर्वत, शैल श्रेणी मतलब पर्वत वर्ग में भूप आप राजा हैं। जैसे राजा को भूप कहते हैं ना, भू मतलब पृथ्वी, प मतलब पालक या राजा, तो राजा को भूप कहते हैं। तो गोवर्धन है शैल श्रेणी भूप और अतुल पृथुल, उनकी कोई तुलना नहीं है, बहुत महान है, विशाल है वो, लंबाई में चौड़ाई में भी और बस उसकी महात्म्य में भी। तो हे गोवर्धन, जिनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती महान पर्वतों में, आपका बहुत भाग्य सौभाग्य है। क्यों? प्रपद्य, आपने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? भावम, उस स्थान को प्राप्त किया। किस स्थान को प्राप्त किया? छत्र, आप छत्र बने। जो छाता होता है ना, तो छाता किसी दंड के ऊपर खड़ा होता है ना, छाता तो ऐसे ही नहीं हो सकता, कोई आधार होना चाहिए। तो आप छत्र बने थे, तो किस दंड पे आप आधारित थे? निज पति भुज दंड, आपके पति, आपके स्वामी श्री कृष्ण, आपके आराध्य देव श्री कृष्ण के भुज, वो दंड बन गए, और इसलिए आपने छत्र का स्थान प्राप्त कर दिया। और ऐसे छत्र का स्थान प्राप्त करके आपने क्या किया? प्रतिहत, नष्ट कर दिया। क्या कर दिया नष्ट? गर्व। किनका गर्व? देवेंद्र अर्थात देवराज इंद्र। और ये देवराज इंद्र कैसे थे, क्या हुआ था उनको, कौन सी बीमारी हो गई थी? मद धृष्ट उद्दम उद्दंड, मद अर्थात घमंडी हो गए थे, धृष्ट भी वैसे ही, धृष्ट और उद्दंड हो गए। तो ऐसे देवराज इंद्र के गर्व को नष्ट आपने कर दिया। तो निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम, इसलिए आपके निकट मुझे आप निवास स्थान दीजिए। बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि यहाँ मैं शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये मैं शब्द दो शब्दों से जुड़ा हुआ है। तो एक है प्रियम और दूसरा है देही। प्रियम में अर्थात आप मेरे बहुत प्रिय हैं, ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन से कह रहे हैं कि आप मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। इस तरह से ये मैं शब्द प्रियम से भी जुड़ा हुआ है, साथ साथ देही, देही मतलब दीजिए। तो क्या दीजिए? आपके निकट वास दीजिए। लेकिन किनको दीजिए? मैं, मुझे दीजिए आप। तो ये मैं शब्द प्रियम और देही दोनों से संबंधित है। और बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि ये काकाक्षी न्याय के अनुसार है। काकाक्षी न्याय बड़ी अद्भुत बात है। देखिए, ऐसे कहा गया है, ऐसे हम नहीं जानते कि ये सही है। दो आंखें होंगी, जो कौवे होते हैं ना, उनका मुख होता है, मुख के दोनों तरफ उनके दो आंखें होती हैं, है ना। तो काकाक्षी न्याय में ऐसे कहावत थी कि वैसे कौवे की केवल का एक आंख होता है, कभी बाएं तरफ आता है कभी दाहिने तरफ, तो एक ही आंख से दोनों तरफ से वो देखता है, आंख एक और आंख के जो गड्ढे हैं वो दो, तो कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से, तो एक ही आंख से दोनों तरफ कौवा देख सकता है। काक अर्थात कौवा, अक्षी अर्थात जिनकी आंखें हैं। तो न्याय काकाक्षी न्याय, ठीक उसी तरह से कभी किसी एक शब्द का प्रयोग दो शब्दों के साथ भी हो सकता है। साधारणतः एक शब्द का प्रयोग दूसरे किसी एक शब्द के लिए किया जाता है, परंतु यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग किया गया है प्रियम के लिए भी और देही के लिए भी, क्योंकि गोवर्धन रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए बहुत प्रिय हैं और वो अपने लिए गोवर्धन के पास निवास स्थान चाहते हैं। तो ऐसे बलदेव विद्याभूषण जी करते हैं। अब वो आगे कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी चिंतन कर रहे हैं कि हो सकता है कि गोवर्धन इस प्रार्थना को सुनकर, अर्थात इस पहले पंक्ति को सुनकर वो प्रश्न करें, अरे रघुनाथ, इतने सारे पर्वत आदि सब अद्री आदि यहाँ पे हैं, तो केवल मेरे पास ही क्यों निवास करना चाहते हो? तो इसका उत्तर रघुनाथ दास देना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? आप अतुल पृथुल शैल श्रेणी भूप हैं, सारे पर्वत वर्ग में आप राजा हैं, अतुलनीय है, आपकी तरह कोई नहीं है। और तो फिर यदि ऐसे उदाहरण दिया जाए कि कोई व्यक्ति, एक राजा जो विश्व सम्राट है, उसका संग छोड़ के कोई एक जमींदार के पास जाके आश्रय लेगा, तो यार ये क्या कोई बड़ी बुद्धिमानी की बात है? कोई चाहे तो जमींदार के आश्रय को छोड़कर विश्व सम्राट के आश्रय में जाए तो कुछ बात बनती है, परंतु यदि विश्व सम्राट को छोड़े और फिर एक छोटे जमींदार के पास जाए तो फिर इसमें क्या लाभ है? ठीक उसी तरह से कहना चाहते हैं, ठीक है पर्वत तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपका आश्रय छोड़कर उनके पास जाना ये तो बुद्धिमानी की बात नहीं है, इसलिए मैं केवल आपके आश्रय में ही रहना चाहता हूं। तो इसलिए फिर वो इस श्लोक के पहले दो लाइन जो है वो कहते हैं, निज पति भुज दंड छत्र भाव प्रपद्य प्रतिहत मद धृष्टो दंड देवेंद्र गर्व। तो आप कितने भाग्यशाली, कितने महान हैं आप, इसलिए मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। मद भक्त पूजाभ्यधिका, तो गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं, तो भक्तों के कृपा से ही हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के भक्तों की पूजा भगवान के स्वयं भगवान की पूजा से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे गिरिराज गोवर्धन कृष्ण हैं और अपने भक्त के रूप में भी हैं, वो दोनों ही एक साथ में हैं, भगवान भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं। गोवर्धन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में अधिकतर गोवर्धन का महत्व तो भक्त के रूप में जाना जाता है, हालांकि इस बात को भी हम मानते हैं कि ये स्वयं भगवान है, कृष्ण है, फिर भी महत्व अधिक उनके भक्त की भूमिका के संबंध में है। इसलिए यहाँ पे वो चाहते हैं कि गोवर्धन का मैं आश्रय लूं, क्योंकि ये सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के। तो दूसरा श्लोक है, तो इसमें द्वंद्वम जो दो हैं, कौन दो? नव यूनो हो, जो दो युगल जोड़ी है राधा कृष्ण की, वो दोनों हैं, वो क्या कर रहे हैं? अमंदम, बहुत ही उदारता से क्या करते हैं? रचयति, रचना करते हैं। क्या रचना करते हैं? लीला है, उनकी लीलाओं की रचना करते हैं। उनकी लीलाएं कैसी होती हैं? प्रमद मदन, उन्मत्त प्रेम की लीलाएं होती हैं। कहाँ करते हैं ये लीला? राधा कृष्ण कंदरे कंदरे पे, हे गोवर्धन आपके गुफे गुफे के अंदर राधा कृष्ण अपने प्रेम भरी लीलाओं को प्रकट करते हैं, उनकी रचना करते हैं। इसीलिए कलनार्थम मैं इनका दर्शन करने के लिए आपको एक माध्यम बनाना चाहता हूं, आपके द्वारा आपकी सहायता से आपकी कृपा से मैं तद्वयोर में मैं इन युगल जोड़ी राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करना चाहता हूं, इसलिए निजे निकट निवासम देही गोवर्धनत्वम, आपके निकट में निवास करूंगा तो निश्चित ही इन सुंदर लीलाओं का दर्शन मैं कर पाऊंगा। तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं, तो ठीक है यदि ऐसा ही है, यहाँ मेरे गुफों के अंदर राधा कृष्ण अपनी प्रेम भरी लीलाओं को प्रकट करते हैं, तो दो तीन दिन रहो यहाँ पे, इनका दर्शन करो, फिर चले जाओ किसी दूसरे स्थान में, सदैव हमेशा के लिए यहाँ क्यों रहना चाहते हो? तो गोवर्धन ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का उत्तर इसके लिए है कि इनकी जो लीलाएं हैं युगल जोड़ी की, ये सनातन रूप से चलती हैं, इसलिए मैं हमेशा इनकी लीलाओं का दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसे नहीं है कि लीलाएं केवल दो तीन दिन के लिए चलती हैं, प्रतिदिन होती रहती हैं ये लीलाएं, इसलिए मैं इनका दर्शन सदैव करते रहना चाहता हूँ। फिर तीसरा श्लोक, संखेलयन, संखेलयन आप प्रेरित करते हैं, हे गोवर्धन आप प्रेरित करते हैं, किनको प्रेरित करते हैं, आपके जो बहुत प्रिय हैं उन्हें, कौन उनके प्रिय हैं, श्री कृष्ण, आप श्री कृष्ण को प्रेरित करते हैं क्या करने के लिए, रंग गए ही बड़े आनंद से अपनी क्रीड़ा प्रकाशित करने के लिए, और ये क्रीड़ाएं किनके साथ करते हैं, आपके प्रिय श्री कृष्ण सह बल सखी भी, बलराम के साथ और अन्य जो उनके सखाएं हैं उनके साथ ही सब क्रीड़ा करते रहते हैं, संघेशु, तो इनके साथ मिलकर ये क्रीड़ा करते हैं और उनको ये क्रीड़ा करने की प्रेरणा आपसे मिलती है, संखेलयन सुप्रियम में। तो ये लीलाएं कहाँ करते हैं, उर्वी रूह, देखिए पहली लाइन में है उर्वी ना, तो उर्वी और रूह एक शब्द, उर्वी रूह अर्थात पेड़, तो ये सारी लीलाएं बलराम के साथ अपने सखाओं के साथ आपके प्रिय कृष्ण कहाँ करते हैं, ये लीलाएं उर्वी रूह पेड़ों के नीचे, झर जहाँ पे झरने आदि हैं, दर जहाँ पर गुफे हैं, और सन सनो अर्थात जो पहाड़ी इलाके में कोई समतल जमीन होती है अचानक, उसे कहते हैं द्रोणी, फिर घाटों में, घाटियों में आप करते हैं, तो ये आपके प्रिय कृष्ण ऐसे लीलाएं करते हैं, तो इसलिए मुझे आपके निकट निवास करने की अनुमति दीजिए ताकि मैं इन सब का दर्शन कर सकूं। तो वैसे गिरिराज गोवर्धन ये उनको पूछ सकते हैं, ठीक है मैं राधा कृष्ण की माधुर रासलीला आदि ऐसे मधुर लीलाओं को भी देखना चाहते हो तो संकेत वन में जाओ जो कि बरसानो नंदग्राम के बीच में है, वहां तो ये मधुर लीलाएं तो चलती रहती हैं श्रृंगार रस में, तो वहां जाओ तो वहां पे लीलाओं का दर्शन कर पाओगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को उत्तर इस श्लोक में पाया जाता है, तो उत्तर क्या है कि मैं संकेत वन में जाऊंगा तो केवल श्रृंगार रस के लीलाओं का दर्शन कर पाऊंगा, परंतु यहाँ पे यहाँ सख्य रस का भी आस्वादन कर पाऊंगा, यहाँ पे भी श्री कृष्ण जो आपके प्रिय हैं अपने सखाओं के साथ गायों को चराते हैं, और इसलिए मैं इनका लाभ भी उठा पाऊंगा, सारी लीला यहाँ पे दिखाई पड़ती हैं, और यहाँ पे जो रत्न वेदी है उसमें भगवान क्या कैसी लीलाएं करते हैं, एक तो जब थक जाते हैं क्रीड़ा करके भाग भाग दौड़ के इत्यादि, वहां आके अपने सखाओं के साथ विश्राम करते हैं, साथ साथ में वहां पे उपहास होता है, परिहास मतलब एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते हैं रत्न वेदी पे, और पेड़ों के नीचे क्या है, पेड़ों के नीचे वो जाके झूले बनाते हैं जो शाखाओं से झूल रहे होते हैं, वहां पे उनका आनंद लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर और भी रूह झर दर सानु द्रोणी इत्यादि कहते हैं ना, इसका मतलब है कि इन अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं, इसलिए उनको भिन्न भिन्न रूप से बताया गया है। तो रत्न वेदी के ऊपर उपहास परिहास करते हैं, वृक्षों के नीचे झूला झूलते हैं, और जो झरने होते हैं और जो गुफे होते हैं उनमें वो खेल खेलते हैं, जैसे विशेष रूप से बलदेव विद्याभूषण कहते हैं जब एक बच्चा जो है वो गाय की भूमिका निभाता है, जो गाय यहाँ वहाँ खो गई है कहीं, और बाकी जो बच्चे हैं उनके दो दल बनते हैं, एक जो उस गाय को ढूंढने के लिए जाती है और दूसरा जो गाय को छुपाने या अपहरण करने जाती है, इस तरह से ये लीलाएं होती हैं। तो झरनों में और गुफों में ये लीलाएं होती हैं। और जहां तक अन्य सारे सानु द्रोणी ये सब घाटी है और पहाड़ी इलाका है, कभी समतल जमीन है, तो इसमें कुश्ती आदि सब करते हैं बाल बाल मिलके। तो ये सब लीलाएं आपके यहाँ होती हैं, इसे मैं सबको देखना चाहता हूँ। तो यहाँ आपके निकट निवास करने से न केवल राधा कृष्ण की श्रृंगार लीलाओं का दर्शन कर पाऊंगा मैं, परंतु इन समस्त सख्य रस की लीलाओं का भी दर्शन मैं कर पाऊंगा। फिर चौथा श्लोक वास्तव में ऐसे करते हैं, फिर से इसका उच्चारण करते हैं ताकि थोड़ा मन में ताजा रहेगा। रसन दिनव यूनो साक्षिणीं दान केले, ज्योति परिमल विद्धं श्याम वेदिं प्रकाश्य, रसिक वर कुलानां मोदमास्फालयन्मे, निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं, प्रकाश्य। आप प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? एक सांवले रंग की वेदी मंच को आप प्रदान करते हैं, जो कि द्युति बहुत ही तेजस्वी है, परिमल विद्धम बहुत ही सुगंधित है, ऐसे वेदी को आप प्रकट कराते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, ये वेदी साक्षिणी, ये साक्षी है। किन चीजों के लिए साक्षी है ये वेदी? दान के लिए है। जो दान के लिए लीला होती है ना, दान के लिए आपने सुना होगा, आपने से जो बरसाना आदि सब गए हैं, तो भगवान और गोपियों के बीच में कर लेने, कर वसूल करने की लीलाएं चलती हैं, तो ये दान के लिए, तो ये सारे दान घाटी आदि है ना यहाँ पे स्थान गोवर्धन में। तो ये श्याम वेदी जो है साक्षी है ये दान केली के लिए, केली अर्थात जो लीलाएं हैं, दान की लीलाएं। तो इन लीलाओं के साक्षी हैं किन के, कौन करते हैं ये? नव यूनो हो राधा कृष्ण युगल जोड़ी करते हैं, जो कि रस निधि, रस के सागर हैं ये दोनों। और जब ऐसे इनकी लीलाओं को देखते हैं तो रसिक वर कुलाना मोदम आस्फालयन में, आप रसिक कुल, रसिक भक्तों के समाज में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, रसिक वर कुलाना, ऐसे रसिक भक्तों को आप दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं मोदन आस्फालयन में। इसलिए निकट निज निकट निवासम देही गोवर्धनत्वम, तो आपके पास मुझे निवास दीजिए। श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि आपके इस श्याम वेदी को देखकर जो रसिक भक्त होते हैं उनको बहुत ही दिव्य आनंद की अनुभूति होते हैं होती है, इसलिए वो लोग जोर से आनंद में चिल्लाते हैं। और मैं भी अगर यदि आपके पास निकट ही में निवास करूं तो मैं भी सुन पाऊंगा इन भक्तों को, जबकि वो बड़े आनंद से ऊंचे स्वर में बात कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं आनंद से, तो मैं भी वहां पास में जाऊंगा और मैं भी उसी श्याम वेदी का दर्शन करूंगा जो कि राधा कृष्ण के दिव्य लीलाओं के साक्षी हैं। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रार्थना है। तो पांचवा श्लोक, हरि दयितम अपूर्वम राधिका कुंडमात्मा, प्रिय सखमिह कंठे नर्मणा लिंग्य गुप्तः, नव युग युग खेलास्तत्र पश्यन् रहो मे, निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने नर्मण आलिंग, बड़े खेल खेल में आपने आलिंगन किया है। किनका आलिंगन किया है? उनका जो कि आपके बहुत ही आत्मप्रिय सख्यम सखम सखाम, जो आपके बहुत ही प्रिय है। कौन है वो? राधिका कुंडम। उनके कंठ को, राधा कुंड के कंठ को आपने बड़े आनंद से आलिंगन किया हुआ है। और ये कौन है, ये क्या है? राधिका कुंड हरि दैतम, भगवान हरि श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हैं और अपूर्व, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। नव युग युग खेला तत्व पश्चन रहो में। और तो आप इस तरह से भगवान के प्रिय राधा कुंड, जो कि आपके प्रिय सखा है, आप उनका आलिंगन करते हैं। और वहां पे जो नव युवा युग खेला है, अर्थात राधा कृष्ण जो अपनी लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, उनके आप उनको आप देखते हैं। गुप्त है, गुप्त रीति से आप दर्शन करते हैं इन लीलाओं का, इसलिए मैं भी वहां रहना चाहता हूं। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि हो सकता है कि गोवर्धन ये प्रश्न करें कि इतने सारे स्थान साथ पास में है ना ब्रज में, उनमें जाके क्यों नहीं रहते, केवल यहाँ पे मेरे पास ही क्यों, और वो भी हमेशा के लिए, ऐसा क्यों? तो रघुनाथ दास गोस्वामी का उत्तर है कि मैं राधा कुंड में रहना चाहता हूँ। और जिस तरह से आप इन लीलाओं का दर्शन करते हैं, तो मैं भी वैसे ही इन लीलाओं का दर्शन करना चाहता हूँ। तो गोवर्धन प्रश्न पूछेंगे कि भाई मैं कैसे दर्शन करता हूँ, क्योंकि आपने बड़े आतुरता से राधा कुंड के कंठ का को आलिंगन किया हुआ है। तो राधा कुंड के गुण कैसे हैं? राधा कुंड है हरि दैतम, भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हैं और अपूर्वम अतुलनीय हैं, इस तरह से बलदेव विद्याभूषण कहते हैं। तो छठा श्लोक, स्थल जल तल शष्पे भूरः छायया च, प्रतिपदमनुकालं हन्त संवर्धयन् गाः, त्रिजगति निजगोत्रं सार्थकं ख्यापयन्मे, निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं। वास्तव में हंत आप क्या करते हैं? संवर्धयन, आप वर्धन करते हैं, पोषण करते हैं। किनका? गाह, गायों का, श्री कृष्ण के गायों का पोषण आप करते हैं। प्रतिपदम, सब जगह, सब स्थानों में, हर समय आप करते हैं। सर्वथा सर्वदा आपके इलाके में आप गायों का पोषण करते हैं। किस तरह से आप पोषण करते हैं, क्या करते हैं आप? स्थल जल तल शष्पे भूरः छायया च, तो इन समस्त स्थानों में आप करते हैं, उनका पोषण करते हैं। किस तरह से? स्थल, जो स्थान है, समतल जमीन है, जल है, और जो घास है, और वृक्षों की छाया, भूरः छायया च, तो ये सारी चीजों के द्वारा आप गायों का पोषण करते हैं। इसलिए निज गोत्रम, गोत्रम अर्थात नाम, तो आपका जो नाम है गोवर्धन, सार्थकम, आप सार्थक करते हैं, क्योंकि आपका नाम है गोवर्धन, जो गायों का वर्धन करते हैं। तो इस तरह से गायों का पोषण करके वास्तव में आप आपके नाम को सार्थक कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन लीलाओं के द्वारा ख्यापयन आप उद्घोषणा कर रहे हैं त्रिजगति, सारे तीनों जगतों में त्रिभुवन में आप घोषणा कर रहे हैं कि आपका नाम गोवर्धन है और इसका आप सार्थक कर रहे हैं, इसलिए निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। तो यहां पे थोड़े भाव का परिवर्तन होता है। ऐसे बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि पहले रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे थे कि मैं राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन अभी इस भाव को पहुंचे हैं कि नहीं नहीं इतने निकट की लीला, जो इतने गोपनीय जो लीलाएं हैं, इनका दर्शन करने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, और कोई सर्वसामान्य लीलाएं भगवान की हैं उनको मैं देखना चाहूंगा। तो यहाँ यदि मैं रहूं आपके तट में हे गोवर्धन, तो मैं श्री कृष्ण की गोचारण लीलाओं का दर्शन अवश्य कर पाऊंगा। ये छठा श्लोक का तात्पर्य और भाव इस प्रकार से है। फिर सातवां श्लोक, सुरपति कृत दीर्घ द्रोह तो गोष्ठ रक्षाम, तव नव गृह रूपस्यांतरे कुर्वतैव। अघपकारी पुनोच्चय दत्तमान द्रुतम मे, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। तो यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं उच्चय मतलब ऊंचा, उच्चय दत्तमान। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कि अघपक रिपु, जो अघासुर बकासुर के जो शत्रु हैं, जिन्होंने अघासुर और बकासुर का वध किया है, उच्च ही दत्तमान, उन्होंने आपको बहुत ही सम्मानित किया था, ऊंचा स्थान दिया था उन्होंने आपको। कैसे ऊंचा स्थान दिया था, किस तरह से ऊंचा स्थान दिया था, एव रक्षम कुर्वता, क्योंकि उन्होंने आपके द्वारा रक्षा प्रदान किया। किनको रक्षा प्रदान किया, गोष्ठ जो भगवान का जो समाज है, ब्रजवासी हैं, उनकी रक्षा आपने की, भगवान ने आपके द्वारा उनकी रक्षा करवाई। सुरपति कृत दीर्घ द्रोहतः, सुरपति अर्थात इंद्र देवताओं के राजा, उन्होंने किए हुए कृत दीर्घ लंबे समय के लिए द्रोहतः जो आक्रमण किया, उससे रक्षा प्रदान करने के लिए भगवान ने आपका प्रयोग किया, इसलिए आपको उन्होंने आश्रय बनवाया। तव नवगृह रूपस्यांतरे, आप सारे ब्रजवासियों के लिए एक नए घर बन गए, नए निवास स्थान बन गए, बहुत बड़ी बात है। इस तरह से आपको इतना बड़ा सम्मान मिला श्री कृष्ण के द्वारा, इसलिए निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि हे रघुनाथ, जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको वो ब्रज में किसी भी स्थान में वास करने से प्राप्त हो जाएगा, तो यही क्यों, केवल यही मेरे पास ही क्यों। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का इस श्लोक के द्वारा उत्तर यह है, क्योंकि आप श्री कृष्ण के द्वारा इतने सम्मानित हुए, इसलिए तो गोवर्धन पूज से मैं कैसे सम्मानित हुआ, क्योंकि आप एक नए निवास स्थान बने, आप एक नए आश्रय बने सारे ब्रजवासियों के लिए, इसलिए। तो इसका तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को हर अच्छे कार्य में श्रेय देना चाहते हैं, यद्यपि भगवान ही सब सारे कार्यों को संपन्न करने वाले हैं, विशेष रूप से जब भक्तों की रक्षा होती है तो स्वयं भगवान करते हैं, जैसे कि भगवद गीता में भी वो घोषणा करते हैं, परंतु योगक्षेम वहां भी हम तो कहते हैं, फिर भी अनेकों बार वो अपने भक्तों को निमित्त बनाना चाहते हैं और भक्तों के माध्यम से अन्य भक्तों की भी रक्षा करना चाहते हैं, या उनके विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा गोवर्धन के द्वारा की। गोवर्धन भक्त हैं, ब्रजवासी भी भक्त हैं, तो एक भक्त का प्रयोग उन्होंने अन्य भक्तों की रक्षा के लिए किया। तो आप कितने महान हैं हे गोवर्धन, इसलिए मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण ने ही आपको सारे ब्रजवासियों के लिए एक आश्रय चुना, तो मैं भी आपका आश्रय स्वीकार करना चाहता हूँ। फिर आठवां श्लोक, गिरिमृपहरी दास श्रेणी वर्येति नामामृतमिदमुदितं श्री राधिका भक्त्र चंद्रात्। व्रज नवतिलकत्वे क्लुप्त वेदै स्फुटं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं। पहले तो लाइन को मैं एक साथ में इसलिए गाया कि नाम और अमृतम, नामामृतम ऐसे अलग से गाने से क्या होता है, मृतम हो जाता है, इसका अर्थ बदल जाता है। अमृतम की जगह मृतम हम बोल देंगे, नाम मृतम, मृतम नामामृतम है, इसलिए एक साथ में हमने कहा। तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक में कहते हैं, हे गिरी नृप, हे पर्वतों के राजा, देखिए हरिदास श्रेणी वर्य, ये जो हरिदास की श्रेणी है, हरिदास अर्थात भगवान श्री कृष्ण के दासों के वर्ग में आप वर्य हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। ये नामामृतम ये अब कहां से आया है, जो आपका नामामृत है ये हरिदास वर्य, इदम ये उदितम, ये उदित हुआ है श्री राधिका वक्त चंद्रात, तो श्रीमती राधा रानी के मुखारविंद से ये उत्पन्न हुआ, ये शब्द, ये नामामृत जो है अमृत सा नाम उत्पन्न हुआ हरिदास वर्य। और व्रज नव तिलकत्वे क्लिप्त वेदे स्फुटम में, और आज आप सारे और वेद भी ऐसे घोषणा करते हैं कि आप व्रज भूमि के तिलक बन गए हैं, इसलिए मुझे आपके निकट निवास स्थान दीजिए। तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि गोवर्धन, रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे कहते हैं कि देखो रघुनाथ, पुराणों में कहा गया है पंच योजनम एवास्ति वनम में देह रूपकम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये पंच योजना वाला जो वृंदावन है, वनम एव अस्ति वनम, मैं देह रूपकम, ये मेरा ही देह है, ये पंच रूपी वृंदावन मेरा निजी देह है। तो जब ये वृंदावन ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का देह है, तो कहीं भी यहां वृंदावन में वास करना एक समान हो जाएगा, तो केवल मेरे पास ही क्यों रहना चाहते हो, गोवर्धन में ही क्यों रहना चाहते हो। तो इसके उत्तर में रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि देखो अतुल पृथुल शैली भूप प्रियम, ये तुम्हें पहले श्लोक में ही कह चुका हूं, अब दोबारा अब मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो हरिदास वर्य कह के घोषित किया है किन्होंने, श्रीमती राधा रानी ने स्वयं श्रीमद भागवत में, वो प्रसिद्ध श्लोक आप सब जानते होंगे, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयोस्तयो यत पानीय सूय वस कंदर कंद मूलैहि। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, गोवर्धन की व्याख्या है, गोवर्धन की चर्चा करते हैं, गोवर्धन का मनन करते हैं, तो ये श्लोक अवश्य मन में आता है। वैसे इस श्लोक से स्पष्ट नहीं समझा जाता कि कौन बात कर रही है, लेकिन आचार्य ने बताया कि वास्तव में शुकदेव गोस्वामी यही बताना चाह रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी अन्य सखियों से कह रही है हंता अयम अबला, हे सखी सुनो, ये गोवर्धन कितने भाग्यशाली हैं। हंता अयम अद्रिर, ये अद्री गोवर्धन कितने भाग्यशाली हैं, किधर किस तरह से ये सेवा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के, हरिदास है ये। हंताय मद्रिर अबला हरिदास वर्य, तो हरिदासों में से ये सर्वश्रेष्ठ है। वैसे और भी हरिदास हो सकते हैं भगवान कृष्ण के, और हैं भी, परंतु इनमें से ये श्रेष्ठ है, तो इसलिए मैं यहां रहना चाहता हूं हे गोवर्धन। अधिकस्याधिकम फलम, ये भी एक कहावत है कि किसी कार्य को अधिक करने से, पूर्णता से करने से लाभ भी पूर्ण ही मिलेगा। किसी कार्य को आधा करके छोड़ देंगे ना, तो उसका फल भी आधा ही मिलेगा, है ना। जब आधा करके छोड़ देंगे तो फिर फल भी आधा ही मिलेगा। तो उसी तरह से किसी कार्य को संपूर्ण रीति से कर देंगे तो फल भी उतने ही मात्रा में प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह से, हाँ, मैं मानता हूं कि सारा ब्रज जो है ये भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर है, और कहीं भी ब्रज में वास करने से लाभ होगा, परंतु आपके पास निवास करने से अधिक लाभ होगा। इसलिए अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, ऐसे उत्तर है रघुनाथ दास गोस्वामी का। तो नौवें श्लोक का पठन करते हैं। निज जन युत राधा कृष्ण मैत्री रसाप्ता, व्रज नर पशु पक्षी व्रात सौख्य कथातः, अगणित करुणत्वान् मामुरे कृत्य तांतन, निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं। तो यहाँ रघुनाथ गोस्वामी कहते हैं, एक है, आप अकेले क्या करते हैं, दातः आप प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, सौख्य परम सुख दिव्य आनंद आप प्रदान करते हैं अकेले। किस तरह, किनको प्रदान करते हैं, व्रज नर पशु पक्षी व्रात, जो वृंदावन के जितने भी पशु हैं और पक्षी हैं और नर हैं, अर्थात ब्रजवासी का जितने भी हैं, आप उनको परम सुख प्रदान करते हैं अकेले। किस तरह से प्रदान करते हैं, आक्तर उनको प्रदान क्या करते हैं, मैत्री रस, मैत्री रस प्रदान करते हैं। किनके प्रति मैत्री रस, राधा कृष्ण और निज जन युत राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण और उनके जितने भी पार्षद हैं उन सबको आप ये रस, मैत्री रस प्रदान करते हैं। और अगणित करुणत्वान माम उरी कृत्य तांतम, तो आपकी कृपा जो है, आपकी करुणा है, इसकी गणना नहीं की जा सकती, अगणित। और तो मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, बहुत दुखी हूँ, तांतम यदि उरी कृत्य, मुझे कृपया स्वीकार कीजिए। स्वीकार करके क्या कीजिए, आपके निकट मुझे निवास स्थान प्रदान कीजिए। तो गोवर्धन और फिर से पूछ रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, तो किसी और स्थान के लिए क्यों नहीं प्रार्थना करते ब्रज में, क्योंकि वास्तव में आप श्री कृष्ण ने केवल आपके स्पर्श मात्र से आपको खड़ा करवाया था, आपने सबकी सबके आश्रय आप बन गए थे, और इसलिए आप बहुत ही करुणामय हैं। तो मैं जानता हूं कि आपके ये गुण हैं, इसलिए आप अवश्य मुझे आश्रय प्रदान करेंगे। तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि गोवर्धन रघुनाथ जी से कहते हैं कि देखो भाई, मैंने प्रदान आश्रय किया, आश्रय प्रदान किया था ब्रजवासियों को श्री कृष्ण के समय, वो तो सारे के सारे शत प्रतिशत शुद्ध भक्त हैं, लेकिन आप तो उस तरह के शुद्ध भक्त तो नहीं हो ना, तो मैं आपको कैसे प्रदान करूं? तो रघुनाथ दास गोस्वामी का भाव है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वास्तव में रघुनाथ दास गोस्वामी शुद्ध भक्त नहीं है, ये भाव है उनका। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं, अगणित करुणात्वाम, क्योंकि आप इतने कृपालु हैं ना, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप मुझे निकट निवास स्थान प्रदान कीजिए। फिर दसवां श्लोक, निरुपधि करुणेन श्री शची नंदनेन त्वयि कपटि शठोपि त्वत्प्रियेणार्पितोऽस्मि इति खलु मम योग्या योग्यता माम अगृह्णन् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं। शुरुआत करते रघुनाथ जी कह के अंतिम श्लोक में, अपि यद्यपि मैं कपटी हूं, षठः मैं कपटी हूं, फिर भी मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आपको मुझे स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे अर्पित है, अर्पित किया गया है आपके पास, अर्पितोऽस्मि किन्होंने, श्री सचिनंदनेन निरुपधि करुणेन, क्योंकि वो बहुत ही बड़े करुणामय है सचिनंदन, निरुपधि अर्थात जिसकी अहितु की कृपा करते हैं श्री सचिनंदन। तो गौरांग महाप्रभु ने मुझे अर्पित किया है, आपके हवाले कर दिया है, यद्यपि मैं कपटी हूं और शठी हूं इत्यादि, फिर भी आप मुझे कृपया स्वीकार कीजिए, और इति खलु अभी आप स्वीकार कीजिए, माम अग्रहणन, कृपया कोई ऐसे विचार मत कीजिए मेरी योग्यता का या अयोग्यता का, क्योंकि आप इतने बड़े कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं, तो अवश्य स्वीकार कीजिए मुझे। इसके पहले वाले श्लोक में बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी ने यह कहा था कि गोवर्धन को इसलिए उन्हें स्वीकार करना चाहिए क्योंकि गोवर्धन बहुत कृपालु है, लेकिन ये तो गौण कारण था, मुख्य कारण अभी बता रहे हैं कि वास्तव में देखिए हे गोवर्धन, मैं शठ हूं, मैं कपटी हूं, कपटी स्वभाव का हूं मैं, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आपको मुझे स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बात कि स्वयं श्री गौरांग प्रभु ने, जो कि बहुत ही करुणामय है, उन्होंने मुझे आपके हवाले कर दिया है, इसलिए आप मुझे कृपया स्वीकार कीजिए, मेरी योग्यता और अयोग्यता के बारे में बिल्कुल विचार मत कीजिए। और ये 10 श्लोक ऐसे कहते हैं, और इसकी फल श्रुति क्या है, इस स्तुति का पाठ करने से, इस प्रार्थना का पठन करने से क्या लाभ हमें मिलेगा? रसद दशकमस्य श्रील गोवर्धनस्य क्षितिधर कुल भर्तुर यह प्रयत्नाद अधीते सपदि सुखदेस्मिन् वासमासाति साक्षात् शुभद युगल सेवा रत्नमाप्नोति तूर्णम्। स यह, जो भी व्यक्ति प्रयत्नात् अधीते, प्रयत्न करता है और अधीते अध्ययन करता है, पठन करता है, दशकम, इस दशकम का, जो कि रसद है, रस प्रदान करने वाला है ये, तो जिनके प्रति, किन के प्रति है, श्रील गोवर्धनस्य, जो कि क्षितिधर कुल भर्तुहु, समस्त पर्वतों का के राजा है ये गोवर्धन, ऐसे गोवर्धन की महिमा का गान जिस दशक में हुआ है, जो कि रस प्रदान करने में समर्थ है, जो भी ऐसे इस स्तुति का पाठ करता है, सपदि शीघ्र ही आसाध्य वो प्राप्त कर लेगा। क्या प्राप्त कर लेगा? सुखदे, बड़े सुख से, साक्षात शुभद युगल सेवा रत्नमाप्नोति तूर्णम्। शीघ्र ही राधा कृष्ण के दिव्य सेवा के अनमोल रत्न को वो प्राप्त कर लेगा और वो इस गोवर्धन पर्वत के निकट निवास प्राप्त कर लेगा। तो ये है फलश्रुति, ये श्री गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम। इसकी स्तुति, इसके पठन करने से और इसका चिंतन मनन करने से, तो जब हम अगली बार गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं या गोवर्धन का दर्शन करते हैं, तो इस प्रार्थना का पठन हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। क्षमा कीजिए राधारमण महाराज, थोड़ा ज्यादा समय हमने ले लिया, आप भी कुछ बोलेंगे? पिछले कितने 35 साल से आप यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा आदि ले जाते हैं ना, 32 साल से। तो राधारमण महाराज जी तो वास्तव में अनुभवी हैं यहाँ, तो उनके सामने बहुत कुछ बोल गए हम। आप कुछ बोलना चाहेंगे महाराज?
हरे कृष्ण। समय तो कम ही है, आगे हम लोग को भगवान की आरती भी करना है, प्रसाद हम देना है, तो हम 5-7 मिनट के लिए ऐसे, मुझे हम सुने थे कि टीकाओं में कि कुछ भक्तों का विचार है, कुछ आचार्यों का विचार है कि श्लोक हंताए मत रबला, समयित रूप से गोपियों का विचार, सभी गोपियां एक साथ कहती हैं, तो कोई गोपी कही होगी, परंतु आज तो प्रमाण के साथ, या और कुछ लोग कहते थे, मैं सुना था कि श्रीमती राधा रानी जी की उक्ति है, लेकिन आज मुझे प्रथम बार प्रमाण मिला कि श्रीमती राधा रानी ने ही इस श्लोक को बोला है। हंताय मद्रि रबला हरिदास वर्जो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयोर पानीय सूय वसुकंदर कंद मूल। हम संक्षेप में 1-2 मिनट में इसी श्लोक का सामान्य अर्थ कहते हैं, तब तो हम पूरे अधिकार के साथ कह सकते हैं कि पहले हम लोग कहते थे कि कोई गोपी कहती है, गोपियां कहती हैं, लेकिन आज महाराज ने बता दिया, स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं श्रीमती राधा रानी कहती हैं। हंत अयम अद्रि अबला हरिदास वर्जो, श्रीमती राधा रानी अन्य गोपियों के साथ गिरिराज जी के एकदम नजदीक थी और कहते हैं कि अयम अद्रि, अयम मतलब यह, संस्कृत में बहुत नजदीक होता है, तो अयम श्रीमती राधा रानी शायद उंगली से इशारा करके गिरिराज जी के तरफ खड़े, अयम अद्रि हंतायम अद्रि अबला हरिदास वर्जो, गिरिराज जी गोवर्धन है, जितने भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं उन सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ एक गिरिराज जी हैं। इस बात को श्रीमती राधा रानी कहते हैं, हंताई अयम अद्रि, अद्रि मतलब पर्वत, हरिदास वर्जो, सभी हरिदासों में भगवान के जितने भी दास हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है। आप लोग जानते हैं भगवान के अनंत अनंत दास हैं और उनकी अनंत सेवाएं हैं, भगवान समर्पित हैं, परंतु श्रीमद् भागवतम में 3 व्यक्तियों के लिए उनका नाम न लेकर डायरेक्ट हरिदास कह दिया गया है। वो 3 व्यक्ति हैं, एक युधिष्ठिर महाराज, राजसूय यज्ञ के वर्णन में नारद जी यह कहते हैं कि हरिदास के राजसूय, हरिदास का राजसूय यज्ञ इतना बढ़िया हुआ कि आज भी मुनि लोग जो उसमें पार्टिसिपेट किए उसका गुणगान करने में थकते नहीं, बड़े प्रेम से वर्णन करते रहते हैं। तो वहाँ युधिष्ठिर न कहकर कहा गया कि हरिदास जो राजसूय यज्ञ कर रहे थे उसके ग्लोरी का वर्णन, और एक उद्धव जी के लिए भी हरिदास शब्द का प्रयोग किया गया। वहाँ पर पुनः वर्णन ऐसा किया गया है कि हरिदास जब मथुरा से भगवान का संदेश लेकर गोपियों के लिए ब्रजवासियों के लिए आए थे तो कई महीने तक हरिदास वहां रहे और ब्रजवासियों को अपने प्रिजन से और भगवान की लीला का वर्णन करके बहुत आनंदित किए। तो वहाँ उद्धव न कहकर एक जगह उद्धव न कहकर सीधे हरिदास कहा गया है, दो लोग हुए। और फिर गिरिराज जी हंतायम अद्री अबला हरिदास गोवर्धन, यह अद्री गोवर्धन भक्तों में श्रेष्ठ है लेकिन हरिदास वर्य तो हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ गिरिराज जी गोवर्धन है। इनके सौभाग्य का वर्णन श्रीमती राधारण यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। गिरिराज जी को हमेशा बड़ी प्रसन्नता है, प्रमोद बहुत खुशी होती है, किस लिए कि राम कृष्ण चरण स्पर्श, गिरिराज जी को स्पर्श प्राप्त होता है बलराम जी और कृष्ण के चरणों का। आप लोग जानते हैं, सुने होंगे, भगवान प्रकट रूप से हम लोगों की भाषा में गणना से लगभग 11 वर्ष तक ब्रज में निवास किए और उस 11 वर्षों में कभी भी दिन के अथवा रात के भगवान ने पद त्राण जूता धारण नहीं किया, घूमते थे नग्न पैर घूमते थे। तो गिरिराज जी पर भी जाते थे, गिरिराज जी की शिला पर जो भगवान पैर रखते थे, बलराम जी जब पैर रखते थे तो उनको कितना आनंद होता था, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि बड़े बड़े योगी लोग जति लोग केवल ध्यान मात्र भी नहीं कर पाते हैं, जिन चरणों को अपने ध्यान पथ में भी नहीं लगा सकते, बड़े बड़े योग करते हैं समाधि करते हैं कि उस चरणों का हमें ध्यान में आ जाए, मन में चिंतन हो जाए, वह भी नहीं होता है। और गिरिराज जी को साक्षात अपना पैर भगवान रखते हैं और नग्न पैर रखते हैं तो इसे गिरिराज जी को बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुश रहते हैं। और दूसरा यह भी अर्थ है, वहीं पर बताया गया, गिरिराज जी तो खुश होते ही हैं, राम कृष्ण के चरण है वो स्पर्श करके उनको भी खुशी होती है, भगवान को भी। जब भगवान गिरिराज जी पर पैर रखते हैं तो भगवान को इतना आनंद आता है, इतना खुशी होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। गिरिराज तो खुश होते ही हैं लेकिन भगवान भी खुश होते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है कि संपूर्ण ब्रज भूमि विशेषकर गिरिराज गोवर्धन जहाँ भी भगवान का पैर पड़ना होता था तो पृथ्वी देवी अथवा गिरिराज इतने संवेदनशील थे, सेंसिटिव थे, भगवान के चरण पड़ने से पहले वो पद्म पत्र के समान, पद्म पुष्प के समान और धरती तो गिरिराज जी की शिलाएं कोमल हो जाती थी। इतना ही नहीं, जब गर्मी का मौसम होता था तब गिरिराज जी की शिलाएं थोड़ा ठंडा हो जाती थी क्योंकि वहाँ भगवान का चरण पड़ना है तो चरण पड़ने से पहले थोड़ा सा ठंडा हो जाते थे गिरिराज, गर्मी का मौसम रहता था और सर्दी का मौसम रहता था ठंडा होता है तो वहाँ पर भगवान का जहाँ पैर पड़ना है तो वहाँ पर थोड़ा वार्म उष्ण हो जाता था। तो गिरिराज जी बड़े संवेदनशील थे, भगवान आ रहे, भगवान का चरण यहाँ पर प्रसन्नता तो हुई लेकिन साथ साथ सेवा भी करना है। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, मोद मतलब प्रसन्नता, प्रकाश रूप से उनको आनंद होता है गिरिराज जी को भगवान कृष्ण के और बलराम जी के चरणों का स्पर्श कर। तो बदले में भी मानम तनोति, गिरिराज जी भी चूंकि भगवान वहां आते हैं तो बहुत सम्मान करते हैं, मानम तनोति सहगो गणो, गिरिराज जी भी भगवान का, भगवान ने उनके जो सखा हैं गायों का समादर करते हैं, उचित सम्मान करते हैं, ऐसे करते हैं देते हैं गिरी पानीय माने पीने का समान। गिरिराज जी में वहां पर गिरिराज जी में अनेक प्रपात झरने झरते रहते हैं, मानसी गंगा इत्यादि नदियां हैं तो गोप सखाओं के लिए अथवा गायें जब प्यास लगती है तो उनको खूब बढ़िया जल भी प्रदान करते हैं, पानी देते हैं अथवा गिरिराज पीने लायक सी कभी कभी मधु टपकता रहता था, जब गोप सखाओं की इच्छा होती डायरेक्ट मधु का आस्वादन कर सकते पी सकते थे। पानीय पीने के लिए जल, कभी भगवान को रास जल विहार करना है तो पानी की व्यवस्था कौन करेगा, गिरिराज अनेक प्रकार गुजरते हैं अथवा मानसी गंगा है उसमें भगवान स्नान करते हैं, जल विहार करते हैं। और सुयवस एक और चीज, यवस समझते हैं ना, बंगला मराठी में गवत कहते हैं, हम लोग कहें गवत कहा जाता है। गवत जानते हैं क्या होता है? घास। गाय जो खाती, गाय को जो खाना दिया जाता है वो तो सबसे बढ़िया गाय के लिए खाना क्या है? घास है। तो यहाँ पढ़ते हैं सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के सुयवस बढ़िया घास देते हैं। बढ़िया घास का मतलब एकदम ग्रीन हरा घास और फ्रेश, तुरंत का काटा हुआ, तुरंत ग्रीन होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, इसके अतिरिक्त सॉफ्ट होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बांस का पत्ता जैसा दे दिए चपाने में, तो ग्रीन होना चाहिए, हरा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, गायों को चबाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अतिरिक्त गिरिराज प्रसाद वो घास होता है, वो फ्रेग्रेंस घास, फ्रेग्रेंट होता है, उसमें सौरभ होता है, सुगंध भी होता है घास में। इतना ही नहीं, गायों का घास रुचिकर भी होता है, टेस्ट भी आना चाहिए। इतना ही नहीं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होना चाहिए, गाय भी घास खाए तो उसका स्वास्थ्य भी बढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, सुयवस मतलब एक और गुण होना चाहिए कि वो उस घास में दुग्ध वर्धक गुण होना चाहिए। गाय घास खाएगी तो दूध बढ़े, ऐसा नहीं कांग्रेस गवत खिला दीजिए तो गाय कितना दूध कर दूसरे कम, कांग्रेस घास होता है नाम पता नहीं किस चीज। यदि वह गाय खा लेगी दिन में तो शाम को यदि 2-5 लीटर दूध करती होगी तो 2 लीटर करेगी। तो ऐसा नहीं, गिरा जी सूय और श्रीमती राधा रानी कहते बढ़िया घास देती है, मतलब हरा घास, फ्रेश घास और सब नरम घास होना चाहिए, उसके साथ उसमें फ्रेग्रेंस होना चाहिए, उसमें टेस्ट भी होना चाहिए, गाय को खाने में रुचिकर होना चाहिए, उससे गायों का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए और सबसे बढ़िया कि उसमें दुग्ध वर्धक गुण होना चाहिए। तो गिरिराज देते हैं, क्या कहते हैं, पानी सुयवस बढ़िया घास देते हैं, बढ़िया गवत देते हैं उनके लिए, खास गायों के लिए। वो प्रसिद्ध गीत गाते हैं ना, गाय क्या खाती है, कैसे पता है,
घास खाए
गई तो गाय को घास देना है, दूध पिए गुआ तो घास गाय को खाए। तो श्रीमती राधा रानी यहाँ कहती हैं कि गिरिराज सुयवस देते हैं, खूब बढ़िया घास प्रसूत रहते हैं, हमेशा गिरिराज घास लदे उनका पूरा पेड़ पौधे हरा भरा रहता है, कंदर कंद मुले। और भगवान को कभी कभी लुका छिपी का खेल करना होता है तो कंदरा चाहिए, अथवा कभी कभी उनको आराम कर छिपना तो होता है, बच्चे छिपते हैं तो छिपने के लिए गुफा होना चाहिए, अथवा कभी हठात बारिश होने लगती है तो बारिश से रक्षा के लिए भगवान को गुफा की जरूरत पड़ती है, अथवा कभी कभी ज्यादा धूप होता है तभी जल्दी गुफा चाहिए, कहीं आश्रय चाहिए, तो गिरिराज उनके लिए गुफा की व्यवस्था की है, गुफाओं में भगवान खूब। और उन गुफाओं की अच्छी गुफाएं हैं, उसमें अनेक विद्या के रत्न जलते, रत्न उसमें होते हैं, प्रकाशमय रत्न, दीपक की जरूरत नहीं, अंदर कितना भी अंदर जो वहाँ प्रकाश रहता है, अंधेरा नहीं होता है, खूब बढ़िया वहाँ पर। और वही गुफाओं का भी गुण होता है, गर्मी के दिन में उसमें प्रवेश करेंगे तो ठंडा लगेगा, और ठंडे के जनवरी दिसंबर में प्रवेश करेंगे तो एकदम उसी चीज को बार जितना सुखद टेम्परेचर गिरिराज रखते हैं। और कंदर कंद मूल है, कंद और मूल पौधा के नीचे कुछ जब खाद्य पदार्थ होता है उसको कंद कहते हैं अथवा मूल कहते हैं, जो जड़ ही लंबा होकर मोटा हो जाता है उसको मूल कहते हैं, जैसे मूली है वह मूल है, और वही उसका जड़ ही कहीं कहीं एकदम विशेष गोला बड़ा हो जाता है उसको कंद कहते हैं, जैसे आलू कंद है और मूली मूल है, यहाँ पर कंद कंद मूल है, और चूंकि राधा रानी फल का नाम नहीं लिखी, फल तो सब लोग देखते ही हैं, वो तो चारों तरफ लगे रहते हैं गिरिराज हमेशा कि वहाँ पर फलों से फूलों से लदे रहते हैं उसको गिरिराज, जितने वृक्ष होते हैं वो कल्प वृक्ष हैं और फलों और फूलों से लदे रहते हैं भगवान की सेवा के लिए। गिरिराज जी ने अपना सर्वात्म समर्पण कर दिया है, अपना शरीर ही दे दिया है भगवान, उसको खेलते हैं खाते हैं घूमते हैं। इसीलिए श्रीमती राधा रानी कहते हैं कि हरिदास भर जो गिरिराज जी सभी सेवकों में, भगवान के जितने भी सेवक हैं चाहे इस लोक में है इस पृथ्वी लोक में स्वर्ग लोक में अथवा इन वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा मिल रहा है, लेकिन सभी सेवकों में सबसे प्रिय और सबसे महत्वपूर्ण ज्यादा सेवा करने वाले गिरिराज जी हैं हरिदास भर जो। तो इस श्लोक है, अच्छा हुआ हम बहुत हम कभी कभी शक होता था, कहीं सुनते थे किसी टीकाकार ने कहा कि गोपी का उद्गार है, हम भी सुने थे कि किसी कोई कहते हैं कि राधा रानी के, लेकिन आज तो अब रघुनाथ दास सुप्रीम अथॉरिटी बता दी, वहीं पर रहे 40 वर्षों से भी ज्यादा रघुनाथ दास गोस्वामी वहीं रहे, वो कहते हैं क्या वो शब्द है श्री राधिका वक्त्र चंद्रात, श्रीमती राधा रानी के मुख कमल से यह बात निकली हुई है कि गिरिराज जी हरिदास भरे हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ। अच्छा हुआ आज गिरिराज जी का हम लोगों को दर्शन हुआ और अभिषेक करने का भी अवसर मिला, और बहुत सौभाग्य की बात है कि गिरिराज जी में बसने वाले महात्मा तीन बंधु प्रभु भी हमारे साथ हैं, गिरिराज जी के तलाठी में बहुत उनको गिरिराज जी ने निवास दे दिया है बहुत अच्छा गिरिराज जी में मुझे रहता हूँ, उन्होंने उन्होंने ही गिरिराज जी को आया यहाँ पर। ठीक है, हरे कृष्ण श्री कृपा की।